ओम शांति। शक्तिशाली योग, हम बाबा के बच्चे तो सभी करते हैं ना शक्तिशाली योग, ने सभी प्रैक्टिस करते हो शक्तिशाली योग। चलिए आज हम पहले शुरुआत ही ऐसे करते हैं, अपनी देह और देह की दुनिया से अपने मन बुद्धि को समेट कर अशरीरी आत्मा बन जाते हैं। ठीक है, जो हमारा मन और बुद्धि देह और देह की दुनिया में फैला रहता है वो समेट लीजिए। देह के भान, देह अभिमान, देह के संबंध संपर्क के भान, देह के पदार्थों के भान और देह भान के स्वभाव संस्कार के भान से मन बुद्धि को समेट लीजिए। अशरीरी आत्मा बन के चलिए परम धाम घर में अशरीर भाव से कंबाइंड हो जाते हैं। योग, योग का अर्थ क्या है? योग मीन्स कनेक्शन, माना जोड़। किससे जोड़? कनेक्शन विद द ट्रूथ, सत्य से जुड़ना, अपने सत्य से जुड़ना। सत्य की परिभाषा क्या होती है? सत्य की दो बातें होती हैं विशेष। एक तो सत्य सदा होता है, एटर्नल, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, है ना। सत्य जन्म और मरण से परे होता है, ना सत्य पैदा होता है ना कभी मरता है, सदा ही होता है। दूसरा, सत्य अपरिवर्तनशील है, सत्य कभी अनचेंजेबल है, कभी बदलता नहीं है। तो एक इंसान का सत्य क्या है? आप सभी का अपना अपना सत्य क्या है बताओ? देह सत्य है, यस, जो समाज में हमें रोल मिला है, मेल फीमेल, माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, ये सत्य है। ये तो रोल है ना, रोल। एक ही दिन में कितनी बार रोल बदलते हैं हमारे, नहीं? देखे संबंध संपर्क सत्य हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगे। देखे पदार्थ सत्य हैं, देवान के स्वभाव, देवान के स्वभाव कौन से हैं? ये पांच विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सदा साथ रहते हैं क्या? बचपन में नहीं होते, फिर बुढ़ापे में फिर खत्म हो जाते हैं, है ना। और देवान के संस्कार कौन कौन से होते हैं? आलस्य, अलबेलापन, दूसरों में अवगुण देखना, बदला लेने की भावना, शक, अनुमान, चिंता, भय, जल्दीबाजी और ईर्ष्या, द्वेष। ये 10 बातें हैं जो मुख्य मुख्य संस्कार देवान के हैं। तो ये भी सत्य नहीं है। तो सत्य क्या है? हम सभी जानते हैं हम सत्य क्या है। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। तो चलते फिरते, उठते बैठते, अगर हमें ये अटेंशन रहता है, ये हमें याद रहता है, इससे हम जुड़े रहते हैं कि मैं देह नहीं, स्थूल देह नहीं, स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा, अगर इतना भी याद है निरंतर, तो यही योग है, राइट। और जब जहां आत्मा है, तो हम आत्मा जब अपने को देह समझते हैं तो क्या याद आता है? देह के माता पिता, देह के संबंध याद आते हैं। जब अपने को आत्मा समझते हैं, ऑटोमेटिक हमें कौन याद आएगा? परमात्मा याद आता है। परमात्मा के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति होती रहती है, नहीं? परमात्मा से हमें क्या क्या प्राप्तियां हुई हैं वो याद आती रहती हैं। जब जब बाबा से मिलन हुआ है, बहुत सुंदर सुंदर अनुभव हुए हैं, तो वो याद आते हैं, नहीं आते? और सृष्टि रूपी ड्रामा में बाबा ने सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान हमें दिया है, कर्म फिलॉसफी के सिद्धांत हमें समझाया है, श्रेष्ठ कर्म क्या होते हैं, पाप कर्म क्या होते हैं, विक्रम क्या होते हैं, है ना। बाबा ने इसका पूरा ज्ञान हमको दिया है, नहीं दिया? तो ऑटोमेटिक जब हम अपने सत्य के साथ जुड़ते हैं कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं और परमात्मा के संतान हूं और मेरे सर्व संबंध उसके साथ हैं, और फिर ड्रामा का पॉइंट है ना, जो हुआ अभी तक, जो हुआ कर्मों के अनुसार हुआ, मेरे कर्मों का फल है, चाहे मेरे शरीर में कर्म भोग हैं, चाहे मेरे सामने परिस्थितियां हैं, घर में परिस्थितियां हैं या बाहर वर्किंग प्लेस पे परिस्थितियां हैं, सेंटर पे परिस्थितियां, जहां भी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, प्रकृति की समस्याएं हैं, गर्मी बहुत है, ठंडी बहुत है, ट्रैफिक बहुत है, पॉल्यूशन बहुत है, वर्ल्ड वार शुरू हो गई है ना, या अर्थक्वेक आ गया, या सुनामी आ गई, जो व्हाटएवर, नहीं, तूफान आ गया, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हुआ है, हो रहा है, होगा भविष्य में बहुत तेजी से होगा, वो सब क्या है, मेरे ही अपने कर्मों का हिसाब किताब है। तो उनको फुल स्टॉप लगा के और तब अशरीरी आत्मा बन के बिना फुल स्टॉप लगाए, जो पास्ट में बीत गया, बिना फुल स्टॉप लगाए हम अशरीरी बन नहीं सकते हैं, हम बिंदी आत्मा बन नहीं सकते हैं। और जब बिंदी आत्मा बनते हैं तो बिंदी बाप से परमधाम घर में बिंदी बाप से कंबाइंड होते हैं, तो हमारी बैटरी चार्ज होती है। तो इस तरह से ये जो है, अगर हम, मैं समझता हूं सिंपल सी बात, अगर यही याद रहे, ज्ञान और योग में क्या फर्क है? ज्ञान है सत्य की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रूथ, है ना। और योग क्या है? योग क्या है? योग है सत्य को रिवाइज करते जाओ बुद्धि में, बार बार मन में रिवाइज करते जाओ और रियलाइज करते जाओ। सच्चे दिल से महसूस करो, सचमुच में मैं देह नहीं हूं, मैं इन दोनों भिक्टों के मध्य, यहां से 2.5 इंच अंदर, यहां से 3 इंच नीचे, मैं यहां बैठ के आत्मा, मैं आत्मा हूं, और मुझे, मैं आत्मा 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं से तीनों कर्मेंद्रियां, तीनों सूक्ष्म कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि संस्कार और शरीर की पांचों कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां जिसे कहते हैं, आंख नाक कान मुख भारी त्वचा अंदरूनी त्वचा, और शरीर के 80,000 अरब कोशिकाओं से बने 8 अंगों को क्या कर रही हूं, चला रहे हूं। चलते फिरते ये अनुभूति होना ही योग है। ये रिवाइज, मुझे याद आता जब मुझे हार्ट की बीमारी हुई थी 96-97 में, तो बाबा से मैसेज आया था, बाबा से मैसेज, गुरुजादी के द्वारा मैसेज मंगाया, पर बाबा ने कहा बच्चे की कोई बीमारी अनुभव की अथॉरिटी बनाने के लिए आई है। तो मैंने योग लगाना शुरू किया, तो योग लगाते, जैसे भी योग लगाते कमेंट्री से योग लगाते हैं, तो मैंने भी ऐसे शुरू किया। हम सूक्ष्म वतन में जा रहे हैं, परमधाम सूक्ष्म वतन, बाप दादा की गोद में परमधाम में गए, ऐसे किया ऐसे किया। तो एक महीना मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा, मेरे को बहुत सीवियर एंजाइना होता था, हार्ट में मतलब इरेगुलर हार्ट बीट होती थी, हार्ट बीट में बंद हो जाता था, लगता था अभी गए, क्योंकि मेरे को बताया गया था मैक्सिमम 2 साल जी पाओगे ना 97 फरवरी में, क्योंकि कभी भी डेथ हो सकती है, कभी भी। ये बीमारी ऐसी थी, बहुत रेयर बीमारी होती है, इसका कोई इलाज प्रॉपर था नहीं। तो पर पापा ने कहा नहीं तो अनुभव की अथॉरिटी बनाने के लिए है, खूब योग का प्रयोग करो। तो मैंने शुरू किया, एक महीना मैंने करता रहा, कुछ फायदा नहीं हुआ। फिर बाबा को दोबारा मैसेज दिया, तो बाबा ने कहा बच्चे बाबा ने जो जिस विधि से आप योग कर रहे, ऐसे तो बाबा ने कभी बताया नहीं, क्योंकि मैं क्या करता, विजुलाइज करता था, ऐसे मैं आत्मा हूं, परमात्मा हूं, सूक्ष्म वतन परम धाम को विजुलाइज करता था और ऐसे योग करता था। तो बाबा ने कहा ये तो बच्चे बाबा ने बताया नहीं कभी भी। बाबा ने तो बताया है रिवाइज करो और रियलाइज करो। रिवाइज जो बाबा ज्ञान सुनाता है, मुरली सुनाता है, उसके एक एक महावाक्य को रिवाइज, मन ही मन में मनन करो, मन ही मन में रिवाइज करो। कैसे रिवाइज करो, किस इंपॉर्टेंस के साथ रिवाइज करो? बाबा ने कहा कि बच्चे कौन सुना रहा है, जब भी कोई महावाक्य पढ़ते हो, बाबा की मुरली का सुनते हो, जैसे आज की मुरली है ना बाबा की, तो एक एक महावाक्य को कौन सुना रहा है, कौन कह रहा है तुम्हें, कौन कह रहा है? ये जब हम बाबा की मुरली सुन रहे हैं, वो या पढ़ रहे हैं, तो कौन कौन कह रहा है, ये किसकी मुरली है? ऑलमाइटी अथॉरिटी की ना, परमात्मा, परमपिता परमात्मा की। ये सारे विश्व का क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर, नियंता ना, विश्व नियंता, वो कह रहा है। किसको कह रहा है, किसको कह रहा है, किसको कह रहा है, बोलो। उस देवी देवता बनने वाली आत्मा को कह रहा है ना, जिसको बाबा ने स्वयं सिलेक्ट किया है। आप सबको स्वयं बाबा ने सिलेक्ट किया है, आपके अंदर वो फाइल है ब्राह्मण सो देव, फरिश्ता सो देवता बनने की, तभी तो आपको सिलेक्ट किया है। नहीं, 800 करोड़ आत्माओं में से कितने लोगों को सिलेक्ट किया है, कितने लोगों को? मुश्किल से 10-12 लाख लोगों को। उस समय तो बहुत थोड़े थे, जब हम मथे आए थे तब तो 1.5-2 लाख लोग थे सिर्फ। तो बाबा ने इतने सारी आत्माओं में से मुझे सिलेक्ट किया, और क्यों कह रहा है, क्यों कह रहा है? ये 3 बातें, कौन कह रहा है, किसको कह रहा है, और क्यों कह रहे हैं। पतित से पावन बनाने के लिए मेरी जो कमी कमजोरियां हैं, मुझे सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म बनाने के लिए कह रहे हैं। देवी देवता फरिश्ता सो देवता बनाने के लिए कह रहे हैं। हर महावाक्य इस इंपॉर्टेंस से पढ़ो और फिर हर महावाक्य में सात बातें क्या करो, महसूस करो, सच्चे दिल से महसूस करो, रिवाइज इस इंपॉर्टेंस से करो और फिर सात बातें हर महावाक्य में महसूस करो। कौन कौन से सात बातें कोई बता सकता है? बाबा के एक महावाक्य में बहुत गुह्यता है, तो उस गहराई को बाबा क्या कहना चाहता है मुझे, मेरे हिसाब से, मेरी वर्तमान स्थिति से, मेरे वर्तमान के पुरुषार्थ से बाबा उस महावाक्य के द्वारा मुझे क्या गहराई समझा देना चाहता है। जैसे बाबा ने कहा, ब्राह्मण बनकर कोई ऐसी चलन नहीं चलना जो बाप का नाम बदनाम हो, धंधा धोरी करते सिर्फ श्रीमत पर चलते रहो। अब इसका अलग अलग मतलब है सबके अंदर, सबके नहीं है। चेक करो कि मेरे अंदर कोई ऐसी चलन है जिससे बाप का नाम बदनाम होता है। देखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, खाना, चलना, कोई कर्म करना, क्या मेरा ऐसी कोई चलन जिससे बाप का नाम बदनाम होता है? बाबा के श्रीमत के अलावा तो नहीं है। ओम शांति। तो मैं बाबा का मैसेज की बात बता रहा था, तो बाबा ने कहा सात बातें हर महावाक्य में ढूंढो, उस इंपॉर्टेंस से उसको रिवाइज भी करो और सच्ची दिल से महसूस भी करो। क्योंकि सच्ची दिल से महसूसता से क्या होगा, एक तो वो बाबा की बात आपके अंदर उतर जाएगी, बाबा का महावाक्य आपके अंदर, दूसरा अपनी कमी कमजोरी भी दिखाई देगी। जब सच्ची दिल से कोई चीज महसूस करते हैं ना, तो अपनी कमी कमजोरी भी महसूस होती है, राइट? होती नहीं होती, रियलाइज करते हैं ना, तो ये जो है आपके अंदर महसूस होगा। तो इसे तो ये क्या था उसमें, सात बातें कौन सी थी? पहली बात थी गुह्यता, क्योंकि परमात्मा के महावाक्य हैं, ऊपर ऊपर सुपरफिशियल नहीं है, उसमें बहुत गहराई है। हर बच्चे के लिए अलग अलग, 10 लाख बच्चे, 12 लाख बच्चे, 14 लाख बच्चे हैं, तो उसका अर्थ हर बच्चे के लिए अलग अलग है, उसकी गहराई अलग अलग है। मेरी स्थिति के अनुसार, मेरे पुरुषार्थ के अनुसार, मेरी समझ के अनुसार, मेरी पवित्रता के अनुसार, मैंने कितना पवित्रता को अपनाया है, मैंने कितना शुद्ध सात्विक भोजन को बाबा की याद में बनाते हैं, बाबा की याद में खाते हैं, और सात्विक भोजन खाते हैं, कभी कभी राजसिक भी खाता हूं, कभी तामसिक भी खा लेता हूं। मेरी स्थिति अलग है, आपकी स्थिति अलग है, ठीक है, हर एक की अलग अलग है, नहीं ऐसा? तो इस हिसाब से देखो, गुह्यता में जाओ। फिर सत्संग, मेरा सत्संग मतलब मेरा कितना सत्य के संग में रहता हूं, सत्य बाबा है और मुरली, दो ही का संग है ना। इसके लिए मान लीजिए मैं व्हाट्सएप पे रहता हूं, फेसबुक पे रहता हूं, किसी से बहुत ज्यादा बातचीत करता हूं, है ना, परम श्रीमत के अलावा मनमत परमत भी, बुद्धि मुरली के अलावा और भी कुछ चीजें पढ़ता हूं, है ना, और भी कुछ देखता हूं, तो क्या होगा, सत्संग तो नहीं हुआ। हर एक का लेवल अलग अलग है, ठीक है, तो उसके हिसाब से इसकी गहराई समझो। हर एक लेवल, हर एक के लिए अलग अलग गहराई होगी, नहीं होगी, चलन अलग अलग होगी। तो चार बातें ना हमारी, चार आधार स्तंभ कौन कौन से, पवित्रता, शुद्ध सात्विक भोजन और सत्संग और देवी गुणों की धारणा। क्या अभी तक मेरे अंदर कोई अवगुण है? कभी कभी क्रोध आ जाता है, कभी कभी जल्दीबाजी हो जाती है, किसी से ईर्ष्या द्वेष है, कभी चिंता भय हो जाता है, कभी डर लगता है किसी बात का, कभी चिंता होती है, कभी आलस आता है, कभी अलबेलापन आता है, दूसरों के दोष दिखाई देते हैं, कभी किसी के प्रति बदलने की भावना तो नहीं है, ऐसे अपने आप से अलग अलग, ईर्ष्या द्वेष तो किसी से नहीं है, टाइम का प्रेशर, वर्क का प्रेशर में तो कहां नहीं रहता हूं, जल्दीबाजी में तो नहीं रहता हूं, किसी से मोह तो नहीं है, किसी से लगाव झुकाव प्रभाव टकराव तो नहीं है, तो अलग अलग लेवल। इसलिए इसकी गहराई समझने की, तो मुझे गहराई से समझना है, क्योंकि मेरी चलन उसी अनुसार होगी। नहीं, दैवी गुण है, सत्यता, पवित्रता, निर्भयता है, ना, सभ्यता है, अंतर्मुखता है, वेद की वैराग्य वृत्ति है, अनासक्त वृत्ति, उपराम वृत्ति, से बहुत सारे दैवी गुण है, तो उनों की धारणा मेरे अंदर हो रही है, सरलता, नम्रता है, दया, रहम करुणा क्षमा भाव है, उदारता मधुरता है, तो ऐसे अपने आप से देखेंगे जब अलग लेवल पे जाएंगे है ना, तो फिर समझ में आएगा क्या क्या डिफरेंस है। तो पहली बात है गुह्यता, अपने आप से सच्चे दिल से महसूस करो कि बाबा ने कहा ब्राह्मण बनकर, ब्राह्मण का मतलब क्या है, मनुष्य था पहले अभी ब्राह्मण बन गया, ब्राह्मण का मतलब क्या है और ब्राह्मण का मतलब मनुष्य का मतलब क्या है, ब्राह्मण का मतलब क्या है। मनुष्य मना मन के वश में, मन की मनुष्य के मन में उसकी बुद्धि मन और संस्कार में क्या भरा रहता है, देहभान, देह अभिमान, देह के संबंध संपर्क का भान, देह के पदार्थों का भान और देहभान के स्वभाव संस्कार ही अंदर साठे बुद्धि में मन में संस्कार में भरे रहते हैं। और ब्राह्मण किसे कहते हैं, ब्राह्मण को जब शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा उनको जन्म देता है, हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनते हैं, तो बाबा ब्राह्मण बेहद बेहद की बुद्धि, हम ब्रह्मा कुमार बने तो हमारी बेहद की बुद्धि होनी चाहिए, अर्थात हमारी बुद्धि में सदा ही क्या रहना चाहिए, बेहद की समझ, सत्य बेहद सत्य की समझ, बुद्धि में सदा यही भरा रहे। क्या बुद्धि में मेरे कभी कभी देहवान तो नहीं आ रहा है, देहाभिमान तो नहीं आ रहा है, देखे संबंध संपर्क का भाव, कुछ देखे संबंधी याद तो नहीं आते हैं, देखे पदार्थ याद तो नहीं आते हैं, देहभान का स्वभाव संस्कार तो नहीं कोई आता, जो मैंने अभी बात की आपसे है। तो ये देखो मैं सच ब्राह्मण, क्या मैं ब्राह्मण बनाऊं, अभी तक कितना परसेंट ब्राह्मण बनाऊं या कितना परसेंट ब्राह्मण ब्राह्मणी बनी हूं या ब्रह्मा कुमारी बनी हूं। तो जब एक शब्द पढ़ा ना तो उसके अंदर क्या हुआ, ब्राह्मण बेहद की बुद्धि द्वारा मन मनाभव सो मध्याजी भवन बनने वाले। तो क्या जो बेहद की बुद्धि मुझे मिली है, मुरली मिली आज की, क्या मैंने उसको मन मनाभव किया है, क्या उसके साथ में उससे मैं फरिश्ता, मध्याजी माना फरिश्ता सो देवता, क्या फरिश्ता उसके द्वारा में परिवर्तन हुआ, मेरा मेरी टीम परिवर्तन हुई। मन के चार एस्पेक्ट है ना, थॉट्स इमोशंस एटीट्यूड एंड मेमोरीज, संकल्प भावना वृत्ति और स्मृति, तो चारों मेरे परिवर्तन हुए कि नहीं हुए, यस। और परिवर्तन हुए तो पॉजिटिव हो गए, उसमें सब में बेहद भर गया, मैं आत्मा हूं, परमात्मा के संतान हूं, मेरे सर संबंध उनके साथ है, सिस्टरपी ड्रामा में अब तक जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ है, फुल स्टॉप लगा दिया, और अशरीरी बन के अशरीरी बाप से कंबाइंड रहते हैं, या सूक्ष्म वतन में फरिश्ता स्वरूप के साथ बाप दादा की गोद में रहते हैं या परमधाम में रहते हैं। तो ये स्थिति मेरी रहती है, क्या मैं मध्याजी में माना विष्णु भी है, मेल फीमेल के भान से परे, मध्याजी माना यह भी है कि मध्य के संकल्पों से, मध्य के संस्कारों से परे चले गए, जो द्वापर द्वापर से हमारे अंदर आए वो चले गए, उन पर जीत हो गई है, या फिर मध्य माना मध्याजी माना बीच, मेल फीमेल के भान से परे, और मध्याजी माना विष्णु, विष्णु माना मेरे अंदर विष का एक अणु भी तो नहीं रहा है, कोई भी विकार का अंश तो मेरे अंदर नहीं रहा है, क्या मेरी वो स्थिति बनी है। तो ऐसे जिसकी सदा बुद्धि में ही रहता है वो ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण शब्द पढ़ते क्या हुआ, करंट लगी नहीं, नहीं लगी करंट कि मैं अपने आप को चेक किया, मनुष्य से ब्राह्मण बनाऊं, इसी गहराई में गए हम, यस बताइए जाते हैं हम इसकी गहराई में। जब जब अपने को ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहते हैं तो हमें समझ आती कि मेरा ब्रह्मा बाबा कैसा है, मेरा बाप कैसा है और मैं कैसा हूं, मैं कैसी हूं, मेरी मम्मा कैसी है और मैं कैसा हूं, कैसी हूं, मेरी दादी कैसी थी और मैं कैसे कैसा हूं, कैसी हूं, उनका क्या था चलन, मेरा चलन क्या है। तो ऐसे अपने आप को गुह्यता, इसके अंदर राज है, कई सारे राज हैं, हर माँ वाक्य में राज है, सीक्रेट है, कई सारे रहस्य हैं, सस्पेंस है ना, और क्या है, महीनता है, महीनता माना, महीनता माना क्या, सूक्ष्मता है और फिर गुप्त है, ये सारे के सारे महावाक्य इनके गुप्त गुप्त मीनिंग्स भी है ना, राइट, और फिर क्या है, अमूल्य भी है। तो सात बातें ये मैसेज में लिखी हुई थी मेरे, तो मुझे याद है जब मैंने वो शुरू किया और फिर बाबा ने कहा था बच्चे आप एक पेन पेन पैड पे ना पेपर लगा के बैठ जाना और मुरली पढ़ना शुरू करना, ठीक है, इसी तरह से। तो मेरे को उन दिनों जब मुझे तकलीफ हुई, मार्च 97 की बात है, फरवरी तो मेरी इसी में बीत गई, मैंने ऐसे किया, फिर मेरे को एक मुरली पढ़ने में 6 घंटे लगते थे, रिवाइज और रियलाइज करने, एक एक महावाक्य को गहराई से उतर जाने में, समझने में, और फिर मेरे अंदर जो गलतियां होती थी ना, जो मेरे अंदर कमियां कमजोरियां होती थी, उसको लेटर लिखता बाबा मेरे अंदर कमी है, बाबा मेरे अंदर ये है, दिखाई देता था मुझे जब रिवाइज करता था ना अंदर से, और ऐसे सात बातें देखते हुए, और कौन कह रहा है, किसको कह रहा है, क्यों कह रहा है। तो मेरे अंदर क्योंकि मेरी बीमारी थी, हार्ट की दीवारें मोटी मोटी हो गई थी, एंजियोग्राफी में कोई ब्लॉक नहीं था पर दीवारें बहुत मोटी हो गई थी, रास्ता रुक गया था ब्लड जाने का, दिमाग में ब्लड नहीं जाता था, और सारी बॉडी ऐसे होती थी बंद हो जाएगी अभी, छाती बहुत भारी, हाथ एकदम सुन हो जाता, सुन रहता, हमेशा ही सुन रहता था, छाती हमेशा ही भारी रहती थी। तो वो मेरी हालत थी, मैं चार महीने सोया नहीं था, लेट ही नहीं सकता था बिस्तर के ऊपर, लेटते ही मुझे एकदम तकलीफ बढ़ जाती थी बहुत तेज से। तो वो स्थिति थी मेरी। तो क्या हुआ, जब मैंने ऐसे करना शुरू किया लेटर लिखना, दिन में 10-10 बार लेटर लिखता था बाबा को, क्योंकि अंदर जो भरा पड़ा था ना वो निकालना था बाबा, क्योंकि दिखाई देता था निकल रहा है निकल रहा है, फिर वो ये निकालो बाबा को देके 000 पे फैक्स कर देता था बाबा को। 000 समझते हो ना, बाबा का हॉटलाइन फैक्स नंबर क्या है, क्या है, 000। मैं आत्मा 0, मेरा बाप 0, और आज सारे दिन में जो अभी तक बीता मल्टीप्लाइड बाय 0। तो कहां पहुंच गया लेटर, बाबा के पास पहुंच गया, और गया तो फिर उसको फाड़ के डस्टबिन डाल, एक डस्टबिन साथ में रखी रहती थी। तो ऐसे मैंने पुरुषार्थ किया उन दिनों, और मुझे याद है सिर्फ 3 दिन मैंने ऐसे पुरुषार्थ किया होगा, चौथे दिन मेरे को नींद आ गई, मैं तीसरे दिन की रात को मुझे नींद आई, 4 महीने के बाद मैं आराम से लेट गया, सो गया, नहीं तो सो ही नहीं सकता था। सिर्फ 3 दिन पुरुषार्थ किया मैंने ऐसे वाला, रिवाइज एंड रियलाइज, और उस रिवाइज और रियलाइज में मुझे अनुभूति होनी शुरू हो गई प्रैक्टिकली। अगर आपको स्विट्जरलैंड जाना हो तो स्विट्जरलैंड जाने का क्या तरीका, स्विट्जरलैंड देखने का क्या तरीका बताओ, क्या तरीका, यहां बैठे बैठे स्विट्जरलैंड देख सकते हैं आप, देख सकते हो, नहीं देख सकते, मोबाइल में लिखो, यूट्यूब में जाकर लिखो सीनरीज ऑफ स्विट्जरलैंड, क्या होगा, सीनरी खुल जाएंगे, नहीं खुल जाएंगे, नहीं नहीं खुलेंगे, आप देख लो 15 मिनट में काम पूरा हो जाएगा। तो स्विट्जरलैंड जाके आगे नहीं, आगे नहीं आए, ये तो होगा विजुअलाइज। और जाना हो रियल में जाना हो, वहां की ठंडी हवा, वहां की हवाएं, वहां का वायुमंडल को रियलाइज करना हो, सच्चे दिल से महसूस करना हो, तो क्या करना पड़ेगा, पहले छुट्टी निकालनी पड़ेगी, नहीं 15 दिन की या 20 दिन की, फिर पासपोर्ट निकालना पड़ेगा, फिर वीजा चाहिए, और उसके बाद क्या चाहिए है, टिकट चाहिए, और उसके बाद क्या चाहिए, और क्या चाहिए, टिकट भी है आपके पास आगे, फिर क्या चाहिए, और क्या चाहिए, पैसे भी चाहिए, नहीं वहां रहना नहीं है, वहां रहेंगे या तो सेंटर पे रहोगे तो भी, अगर सेंटर पे नहीं रहेंगे तो अदरवाइज होटल में रहेंगे, खाना पीना कुछ करेंगे, तो उसके लिए पैसे चाहिए, नहीं चाहिए, खाली टिकट हो, पासपोर्ट वीजा और टिकट हो, 3 चीजें हैं आपके पास, तो क्या करोगे, रहने के लिए पैसे नहीं है तो क्या करोगे, एयरपोर्ट पे जाएंगे, खिड़की में से आसपास देखेंगे, और वापस अगली फ्लाइट से वापस आना पड़ेगा, नहीं अगर ये वीजा, तो 4 चीजें चाहिए, नहीं चाहिए, तो 4 चीज क्या है, पासपोर्ट है, ये मुरली, ये मुरली में ज्ञान का स्वरूप बन जाना, पढ़ाई मतलब जो ज्ञान है ना, दूसरा पवित्रता, पवित्रता वीजा है, अगर पवित्रता है तो सूक्ष्म वतन में जा सकते हो, बाप दादा की गोद में जा सकते हो, नहीं तो जा सकते हो क्या, जा सकते हैं, नहीं जा सकते, जा सकते हैं सूक्ष्म वतन में, बाप दादा की गोद में जा सकते हैं, परम धाम में जा सकते हैं, नहीं जा सकते। वीजा की अलग क्वालिटी होती है, ऐसे पवित्रता की डिग्री अलग अलग होती है, जितनी पवित्रता की डिग्री बढ़ती जाएगी उतना वीजा आपको कैसा मिलेगा, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, प्राइम मिनिस्टर को भी वीजा मिलता है, प्रेसिडेंट को भी वीजा मिलता है, नहीं मिलता है? नहीं मिलता है? बड़े बड़े हमारे ऑफिसर, विदेश मंत्री को भी वीजा मिलता है, और आम आदमी को भी मिलता है, नहीं? तो उनका वीजा अलग टाइप का नहीं होता होगा, कि सेम होता है, अलग वीजा होता है ना, क्वालिटी, कितनी हमारी पवित्रता उसके हिसाब से, कितना हमारा शुद्ध सात्विक भोजन का सेवन करते हैं, कितना हमारी मर्यादाएं, चार जो धारणा है ना हमारी, चार पिलर हैं, उसमें कितने पक्के हैं, उसके आधार पर मिलता है, राइट? कितना शुद्ध सात्विक भोजन, कितना सत्संग और कितनी दैवी गुणों की धारणा, उसके आधार पर मिलता है, और दिव्य दैवी गुणों की धारणा हमारी टिकट है। सूक्ष्म वतन में जाने के लिए हमारे अंदर दैवी गुणों की धारणा ना हो, पेशेंस ना हो, धैर्यता ना हो, गंभीरता ना हो, रमणीकता ना हो, सरलता ना हो, नम्रता ना हो, दया रहम करुणा भाव ना हो, उदारता मधुरता ना हो, है ना, फिर जा सकते हैं। सहनशीलता दृढ़ता ना हो, संतुष्टता हर्षित मुक्तता ना हो, जा सकते हो, नहीं जा सकते। और फिर टिकट क्या है वहां पे, पैसा क्या चाहिए, पैसा क्या चाहिए वहां जाने के लिए, क्या चाहिए बताओ। अगर बेहद की निस्वार्थ भाव की सेवा करके पुण्य की खाता जमा किया हुआ है तो उतनी देर वहां ठहर सकते हो, नहीं तो क्या होता है, सूक्ष्म वतन में गए, बाप दादा को ऐसे देखा, दूर से मुस्कुराए, एकदम नीचे आ गए, ठहर ही नहीं सकते वहां पर। परम धाम में गए, एक सेकंड अश्री बन के अश्री बाप से पाप गए और बस एक सेकंड में ऐसे किया और तुरंत नीचे आ गए। आपने गैस पे रखा दूध रखा एक लीटर भर के भगोने में और तुरंत एक सेकंड रखा, उतार लिया, तो क्या हुआ, सारे कीटाणु मर गए। कुछ देर तो वहां ठहरना पड़ेगा, नहीं ठहरना पड़े गैस पे, नहीं ठहरना पड़े अग्नि पे, ठहरना पड़े नहीं पड़े, तो हम वहां थोड़ी देर तो रहें, है ना, अपनी बातचीत तो करें, शेयर तो करें, रो रिहान तो करें, बाबा से भिन्न भिन्न संबंधों की अनुभूति तो करें, नहीं करें, तभी तो हम वहां, तभी तो हमारे विकर्म विनाश होंगे, है ना, नहीं, तभी तो हमें संघ की अनुभूति होगी, बाबा से माता पिता शिक्षक सदगुरु बंधु सखा साजन सर्जन और बच्चे के क्या संबंध होता है, उसकी उसकी उससे प्राप्ति क्या होती है, उससे 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 मतलब उससे हमें रियलाइज किया ना, तो अनुभूति क्या होती है, प्राप्ति क्या होती है, तृप्ति क्या होती है, क्योंकि बिना सच्ची दिल की महसूसता के कभी भी अनुभूति नहीं होती है, एक्सपीरियंस नहीं होता, और बिना अनुभूति के प्राप्ति नहीं होती है, और बिना प्राप्ति के कभी तृप्ति नहीं होती है। प्राप्ति माना संपन्नता और तृप्ति माना संपूर्णता, और बिना तृप्ति के पुराना स्वभाव संस्कार परिवर्तन नहीं होता है। हम किस लिए योग करते हैं बोलिए, किस लिए योग करते हैं हम, पुराने स्वभाव संस्कार हमारे परिवर्तन होकर दैवीय स्वभाव संस्कार बन जाए, है ना, फरिश्तों के स्वभाव संस्कार बन जाए, उसके पहले सच्चे ब्राह्मणों का स्वभाव संस्कार बन जाए, नहीं तो ब्राह्मण से फरिश्ता से देवता, नहीं, और बाद में बीज रूप स्थिति का स्वभाव संस्कार बन जाए। चार बातें करनी पड़ेगी ना, पहले तो सच्चा ब्राह्मण बनना पड़ेगा, फिर क्या बनना पड़ेगा, फरिश्ता, फिर देवता, और जब तीनों चीजों का मास्टरी हो जाएगी फिर क्या बन जाएंगे हम, बीज रूप। क्योंकि जाएंगे कैसे, देवता बन के बाप के साथ जाएंगे या फरिश्ता बन के बाप के साथ जाएंगे, हम बाप के साथ बीज रूप स्थिति में जाएंगे। लाश की स्थिति कैसी होगी हमारी बाबा के साथ, बीज रूप स्थिति, हम बीज रूप स्थिति में बाबा के साथ वापस कर देंगे। तो ये हमें देखना है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे, ये तो बात क्लियर हुई ना कि कैसे हमें रिवाइज एंड रियलाइज, सच्ची दिल से महसूस को एक एक बात को सात बातें करते हुए, यही योग है। अब मैं आपको एक एग्जांपल, लौकिक एग्जांपल देता हूं। एक कन्या की, मान लीजिए अब एक कन्या की, कन्या के लिए क्या होता है, कन्या के लिए लड़का देखते हैं ना, कुमार देखते हैं, कुमार देखा पहले क्या मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, कुंडली मिलाते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, जन्मपत्री मिलाते हैं, तो जन्मपत्री मिल गई तो क्या हुआ, अब उसकी सगाई कर दी, ठीक है, सगाई हो गई तो क्या हुआ, अब योग हो गया ना दोनों का, हालांकि दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे पहले, वो कहीं और रहता है ये कहीं और रहती है, तो योग हो गया, नहीं हो गया, इनका योग मिल गया, है ना, योग मिल गया, तो अभी क्या हुआ, अब बीच, अब उनको एक दूसरे की याद आती, कभी 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 याद आएगी, ठीक है, लगातार याद आएगी, नहीं आएगी, योग हो गया ना अभी कि हाँ वो मेरा, वो मेरी पत्नी है बनने वाली है और ये ऐसा है। और जब उसमें क्या होगा, अब वो लड़की और लड़का दोनों कैसे हो जाते हैं, अंतर्मुखी हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं, अंतर्मुखी माना पहले इधर उधर घूमते रहते थे, यहां घूमेंगे वहां घूमेंगे, अभी दोनों अंतर्मुखी हो जाते हैं, ठीक है, स्पेशली लड़की ज्यादा अंतर्मुखी हो जाती है, सोचने लगती है मेरा भविष्य कैसे होगा, कैसे होगा, अंदर अंदर सोचती रहती है ना, और उसके अंदर इस घर से जिस घर में रहती है उससे क्या होता है, वैराग्य आने लगता है, मुझे छोड़ के जाना, मुझे छोड़ के जाना, नहीं नहीं होता है, होता है, अब शादी हो गई, ये तो मान लीजिए बीच में दो महीने रहे तो शादी हो गई, शादी होते क्या होता है, शादी होते उसको क्या करना पड़ता है, अपना तन, अपना मन, अपना धन और संबंध सब छोड़ने पड़ते, नहीं छोड़ने पड़ते, पुराना तन मन धन संबंध सब छोड़ना पड़ता है और वो समर्पण करना पड़ता है, राइट। जब शादी हो गई, तन मन ने समर्पण किया, अब सर्व संबंध उसको क्या है, अब एक ही से सर्व संबंध है उसके, और जब संबंध बन गया तो अब उसको क्या होता है, अब याद रहने लगती है। याद कैसे होती है? उठते बैठते चलते फिरते हर समय उसकी याद रहती है, क्योंकि संबंध हो गया, प्राप्ति होने लगी, है ना। जो थोड़ा जो सुख और दुनिया का अल्पकाल का सुख मिलता है वो मिलने लगा, अच्छे गहने कपड़े मिलने लगे, कोई केयर करने वाला मिला, है ना। पर साथ में कौन मिलता है? पति के साथ कौन और कौन मिलता है? सास मिलती है, ननद मिलती है, पुराना उनका परिवार मिलता है, तो क्या होता है? साथ में सहन भी करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता? सहन करना पड़ता, नहीं करना पड़ता? तो उस सहन करने के बावजूद क्या करती है वो? याद उसकी कैसे? हर समय उसकी याद बनी रहती है, हर कर्म करते उसकी याद रहती है। अब मैं आपको इससे बताऊं, तो पहले योग, फिर याद। और मान लीजिए आप कोई बीमार हो गया दोनों में से, या कोई ऐसा समय आ गया, तो क्या होता है? क्या होता है? तो उसमें मैंपन मेरेपन का भी त्याग करके क्या होता है? अपने खाने पीने का भी त्याग करके क्या होता है? अपनी ड्रेस का भी त्याग करके, मतलब मुझे ये कपड़े ऐसे पहनना, ऐसे करना, मुझे ऐसे चाहिए, ऐसे चाहिए, नहीं, ये भी छोड़ना पड़ता है ना, तब क्या होता है? तब तपस्या होती है। तपस्या माना अपने सब कुछ भूल जाता है आदमी, तब क्या हो? तपस्या, उस तब तपस्या होती है। ऐसे इसकी भी तीन स्टेजेस हैं योग की। पहली क्या है? योग। दूसरी क्या है? याद। जब हम सर्व संबंध से बाप को अपना बना लेते हैं, सर्व संबंधों के अनुभव की अथॉरिटी बन जाते हैं, तो याद निरंतर रहने लगती है। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते याद रहने लगती है। और फिर जब हम क्या करते हैं, उस संबंध में सब कुछ उससे मिल जाता है, हम जब बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं, तो अपना मैंपन और मेरेपन का भी त्याग कर देते हैं, तब तपस्या शुरू होती है, तब हम निराकारी अवस्था आती है हमारी, तब निराकारी बन के निराकारी बाप से हम जुड़ते हैं, तब तपस्या शुरू होती है, उससे हमारे विक्रम विनाश होते हैं 63 जन्मों के। जब 63 जन्मों के विक्रम विनाश होते हैं तो क्या होता है? तब हमारी निर्विकारी अवस्था आती है। जब निर्विकारी अवस्था आती है तो क्या होता है? अब रियल में बेहद की निस्वार्थ भाव की सेवा होती है। उसके पहले थोड़ा थोड़ा स्वार्थ रहता है सेवा में भी। जब निर्विकारी अर्थात हमारे अंदर देहभान का अंश भी समाप्त हो जाता है, संपूर्ण निर्विकारी स्थिति, धीरे धीरे पहले निर्विकारी बनते हैं, फिर धीरे धीरे और निर्विकारी, फिर क्या होता है? कंप्लीट निर्विकारी, संपूर्ण देहभान का अंश भी समाप्त हो जाता है, तो फिर रियल की भेद के निस्वार्थ भाव की सेवा होने, तब निरहंकारी बनते हैं, राइट। और तब हमारी स्मृति स्वरूप की स्थिति, मैं आत्मा, बीज रूप आत्मा, कलवृक्ष जड़ में बीज रूप बाप के साथ कंबाइंड होकर के, अष्टत्वों के साथ, प्रकृति के पांचों तत्वों की और पूरे कलवृक्ष की, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग की सभी आत्माओं को प्रकाश देने लगती, राइट। अभी हम चलते हैं उस पर समझने के लिए शुरुआत से, है ना। ये तो मतलब प्रोसेस मैंने कहा है इस तरह से बताना, अब हम करते हैं। तो जब हमें सत्य की समझ, जैसे मैंने कहा ना मुरली, ये मुरली, इसके लिए क्या चाहिए? इसका मंत्र है मनमना भव। अगर हमें शक्तिशाली योग करना है तो क्या करना पड़ेगा? मंत्र है मनमना भव। और यंत्र क्या है? यंत्र क्या है? क्लीन एंड क्लियर बुद्धि। मेरी बुद्धि क्या होनी चाहिए? क्लीन और क्लियर बुद्धि होनी चाहिए। मनमना भव, मंत्र मनमना भव का है। और राजयोग क्या है? बुद्धि योग है ना। तो अगर मेरी बुद्धि क्लीन और क्लियर नहीं होगी तो क्या होगा? योग लगेगा, निरंतर योग रहेगा, शक्तिशाली योग होगा। तो शक्तिशाली योग तब होगा जब क्लीन और क्लियर बुद्धि अर्थात दिव्य बुद्धि होगी, राइट। और फिर इसका मेन स्विच कौन सा है, या कहें इसका इसका चाबी कौन सी है? वो कौन सी है? बुद्धि क्लीन और क्लियर है, इसकी चाबी कौन सी है? बोलो। सच्ची दिल साफ दिल, सच्ची दिल साफ दिल। तो ये हमें ध्यान रखना। तो अगर हमारी मेरे दिल सच्ची दिल, किसे कहते हैं? जिस दिल में बाबा के अलावा दूसरा कोई ना हो, परम सत्य बाबा, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, वो है सच्ची दिल। पहले क्या था दिल में मेरे? क्या था दिल? माने चेतना, बुलजाई, समझते हैं ना, शूटिंग करते हैं ना, पिस्टल से करते हैं या तीर कमान से करते हैं, ऐसे ऐसे गोले बने होते हैं ना, बीच में एक बिंदु होता है और उसके आसपास पहला गोला, फिर दूसरा गोला, तीसरा गोला, चौथा गोला, पांचवा गोला, छठा गोला, ऐसे होता है ना, तो उसके नंबर से हिसाब से नंबर मिलते हैं। अगर आपने बीच वाले गोले में मारी तो उसे क्या कहेंगे? बुलजाई, मतलब बीच में जाके लगा, इसको कहते दिल, चेतना, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियंस, मेरी कॉन्शियस चेतन चेतन चेतना में क्या है कि मैं कौन हूं, मेरा कौन है, मेरा उससे संबंध क्या है, है ना। और ड्रामा, ये ड्रामा का राज भी दिल में है कि नहीं, अर्थात ABCD है ना, सत्य की समझ ये गहराई से अपने अंदर है नहीं है। और दूसरा साफ दिल माना, जिस दिल में क्या ना हो, क्या ना हो, श्रीमत के अलावा जरा भी मनमत परमंत का अंश ना हो, इसको बोलते सच्चे दिल, साफ दिल। ऐसी दिल है मेरी, चेक करो है ऐसी दिल, कोई और है इसमें बैठा हुआ? अगर मेरी सच्ची दिल साफ दिल नहीं है, दिल में कोई और बैठा है, अपनी देह भी बैठी है, अपनी देहभान देहभिमान कोई विशेषता गुण मेरा, मेरी क्वालिटी, मेरे नाम मान शान का अभिमान थोड़ा सूक्ष्म में बैठा हुआ है, देह के संबंध संपर्क का भान बैठा है थोड़ा सा दिल में, चेतना में, देहभान के स्वभाव, कोई मेरे पास पैसा है, प्रॉपर्टी है, मैं ऐसे हूं, मेरी इतनी चीजें, कोई बात नहीं, तो ये अगर दिल में बैठा है ना, और देहभान का स्वभाव कोई बैठा हुआ है, लगाव झुकाव प्रभाव टकराव बैठा हुआ है ना, कोई भी थोड़े से मोह, थोड़ा सा किसी से, किसी चीज का लोभ, खाने का लोभ, पीने का लोभ, कोई संस्कार आलस्य है, थोड़ा अलबेलापन है, तो क्या होगा, दिल में सच्ची, दिल सच्ची है और साफ नहीं है। मनमत परमत के, मनमत श्रीमत के अलावा जरा भी मनमत है, अच्छा उसने कहा तुम ऐसे करके बैठा करो, उसने कहा तुम लंबा सांस लिया करो, उसने कहा तुम प्राणायाम किया करो, उसने कहा तुम ऐसे कर लिया करो, बाबा ने कभी बताया, बाबा ने कभी किया, जो बाबा ने नहीं किया वो मैं क्यों करूं? यस, क्या ख्याल है? तो जितनी सच्ची दिल साफ दिल होगी जिस लेवल की, उस लेवल के हिसाब से आपकी बुद्धि क्लीन क्लियर बनेगी। तो ये जब हम करते हैं, जब हमारे अंदर का हम अभ्यास करने लगते हैं सत्य की समझ का, उसको अवेयरनेस, उसको बार बार मनन, मन ही मन में मनन करते हैं, रियलाइज में तीन बातें और आती हैं, मन में आता है चिंतन, हाँ बाबा मुझे ऐसा बनना है, जैसे बाबा ने आज कहा ना, ऐसी चलन नहीं चलना जो बाप का नाम बदनाम हो, हाँ बाबा मुझे ऐसी चलन नहीं चलनी जो नाम का बाप का नाम बदनाम हो, मुझे आपका नाम बाला करना है, मुझे आपको प्रत्यक्ष करना है। धंधा धोरी करते सिर्फ श्रीमत पर चलते रहो, ये दो लाइन ही क्या बता रही है हमको, सच्ची दिल साफ दिल बता रही है, सिर्फ श्रीमत, ना मनमत, ना मैंने कहीं पढ़ा है, ना मैंने कहीं किसी और ने बताया, किसी और किताब में लिखा है, कहीं किसी ने कहा तुम ये कर लो, किसी भाई बहन ने क्लास में बताया तुम ये कर लिया करो, है ना, तो बाबा ने बताया नहीं बताया, मुझे फॉलो करना है, मुझे ब्रह्मा बाबा के परिवार में जाना है कि उस भाई बहन के परिवार में जाना है, बोलो किसके परिवार में जाना है, किसके परिवार में जाना है, ब्रह्मा बाबा के परिवार में जाना, किसके किस में जाना है, ब्रह्मा बाबा के साथ आना है कि बाद में आना है, पहले जन्म में आना है, दूसरे जन्म, तीसरे जन्म में आना है, पहले जन्म में आना है। तो ये अपने आप से गहराई से देखो, सच्ची दिल साफ दिल की भी लेवल है डिफरेंट डिफरेंट, तो जिस हिसाब से उस दिन से बुद्धि मेरी क्लियर होगी, तो जब मैं सच्ची दिल साफ दिल करने में क्या होगा, जब हम सच्ची दिल साफ दिल करते हैं तो मेरे अंदर ऑटोमेटिक जितना मैं मनन माना, मनी मनी रिवाइज किया, चिंतन माना बाबा मुझे ऐसा बनना है, मंथन माना, ये रियलाइज में आता है, रियलाइजेशन में, सच्चे दिल से महसूस करने में, हाँ बाबा मुझे ऐसा तो करना है, पर बाबा मेरे को तो ये काम करना पड़ता है, बाबा मुझे तो सारे दिन घर में कपड़े भी धोने, खाना भी बनाना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, कितना काम बाबा मुझे करना है, मैं कैसे करूं, बाबा मुझे तो सारे दिन पेशेंट देखने पड़ते हैं, बाबा वो सीरियस पेशेंट देखने होते हैं, बाबा मैं कैसे करूं, आप तो कहते श्वासो श्वास याद में रहो, मुझे याद आता है एक बार बड़ी दादी जी ने मुझे कहा, मैं दादी के पास रोज जाना होता, दादी ने कहा हुआ था मेरे को, जब से मैं 95 में आया ना मधुबन में, दादी ने कहा मुरली के बाद 5 मिनट मेरे पास आके बैठना है, खड़े खड़े नहीं, बैठना है मेरे पास आके बैठना है, चाहे मैं कहीं कोई बहने भी बैठी हो, कोई भाई भी बैठा हो, कुछ भी हो, आपको मेरे पास बैठना ही है। और कई बार दादी अकेली बैठी होती, चांदनी चौक में बैठी होती, दादी कभी मीटिंग रूम में बैठी होती ना मधुबन में, पांडा भवन में, दादी के पास बैठ, दादी कभी कभी ऐसे कोई बात पूछ लेती थी, ऐसे कह देती थी, कुछ बात सिखाना हो सिखा देती थी। दादी ने कहा गुप्ता जी बताओ अश्वत्थन कौन बनेंगे? तो मैंने कहा दादी आप बाबा बनेगा, ब्रह्मा बाबा, मम्मा बनेगी, आप बनेगी, जो अश्वत्थन की बताया ना, जो है ना वो दिखाया था ना बाबा से चित्र बनाते, बाबा ने 8 नाम बताए थे ना, ऊपर से आए थे, तो मैंने 8 नाम बता दिए। कहते पर उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? तो मैंने कहा दादी आप बताइए। दादी ने कहा और सतन वो बनेंगे जो उनके श्वासों श्वास जिनकी दिल में बाबा और बाबा की मूली रहती है। बाबा ने क्या कहा वो रहता है, उसने ये कहा उसने कहा वो नहीं, यज्ञ में क्या चल रहा वो नहीं, बाबा ने क्या कहा वो रहता है, वो अष्टतन बनते हैं। फिर आदमी ने कहा 108 की माला में कौन आते हैं, मैंने कहा, उसने कहा गुप्ता जी आप बताओ, मैंने कहा दादी मुझे तो नहीं पता, तो उसने कहा अष्टतन में वो आते हैं जो दिन में कम से कम 100 बार जिनको बाबा और बाबा की मुरली याद आती है, बाबा ने क्या कहा वो याद आती है। फिर मैंने हिसाब लगाया कि 8 घंटे तो मान लीजिए हम सोने में तैयार होने में चाहते हैं ना, बाकी 16 घंटा तो हमारे पास बचते हैं ना, तो कितने देर में होना चाहिए, एक बाबा याद आना चाहिए, बाबा की मुरली याद आनी चाहिए, कितनी बार आनी चाहिए एक घंटे में, कितनी बार बताओ, यस 6 बार आनी चाहिए ना कम से कम, नहीं मतलब हर 10 मिनट में बाबा याद आना चाहिए, बाबा की मुरली याद आनी चाहिए, शायद ही मुश्किल है। देखो हमारी दादियां देखो रियल में है कि नहीं, कल बता ना अष्टतन कौन बनते हैं, कल की मुरली में पॉइंट था ना ये वाला, तो अष्टतन वही बनते हैं जो निरंतर बाप की याद में रहते हैं, था ना ये मुरली में लाइन थी ना, निरंतर बाप की याद में रहते हैं, बाबा और बाबा ने क्या कहा उस याद, दादी को क्या याद रहता था हमेशा, बड़ी दादी को जानकी दादी को याद रहता था बताओ, निर्मल शांता दादी को क्या याद रहता था, चंद्रमणि दादी को क्या याद रहता था, कितनी बड़ी समस्या हो यज्ञ में, कितना बड़ी प्रॉब्लम हो, बाबा बाबा बैठा है, बाबा बैठा है, बाबा ने ये कहा ना, बाबा ने कहा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, नहीं कभी प्रॉब्लम आई उनको नहीं ना, तो ऐसी हमारी स्थिति होनी चाहिए। तो आना 108 की माला में किसी को, आप में से किसी को आना 108 की माला में, नहीं आना, आना नहीं आना, 16,000 में किसको आना है, हाथ उठा 16,000 में किसको आना है, बस एक दो को ही आना है, 5-6 को आना है, और बाकी सब किसमें आएंगे, 108 में जिनको आना हाथ उठो, चलो वो 108 तो यही हो गए 108 की माला तो यही बन जाएगी, ठीक है ना, वेरी गुड। तो 108 में अगर 16,000 में आने के लिए भी दिन में 8 पैर होते हैं कम से कम, दादी ने कहा जिनको कम से कम 8 बार, ये बाबा चैम्बर में कुछ बताता था कभी कभी ना, ये बातें मुरली में नहीं होती थी, बाबा कभी कभी चैम्बर समझते हैं ना, चैम्बर माना मुरली के बाद बाबा के साथ कुछ दादियां चैम्बर में आके बैठती थी, चैम्बर माना एक थोड़ी जगह पे बाबा आके उनसे बात रूरियान करते थे दादियों से, तो वहां बाबा शेयर करते थे ऐसी ऐसी बातें, तो दादी ने कहा वो मैं वहां पे दबा बाबा कहता था कि कम से कम जो दिन में 8 बार जिनको मुरली बाबा और मुरली याद आवे, 8 बार हमारे ट्रैफिक कंट्रोल होता है ना याद है, अगर 8 बार भी बाबा को याद किया ना ट्रैफिक कंट्रोल भी ईमानदारी से किया ना तो क्या हो जाएगा, उस समय बाबा की मुरली का पॉइंट देख लो, ऐसे ट्रैफिक कंट्रोल बजा बाबा ने आज कहा उसको, सारी मुरली नहीं वरदान देख लिया और उसको अंदर से महसूस किया, सच्चे दिल से महसूस किया उस योग के समय, अशरीरी हो गए सूक्ष्म वतन में चले गए, बाप दादा गोद में चले गए, ऐसे तो ये जब करेंगे तो क्या होगा, अंतर्मुखता और बेहद की वैराग्य वृत्ति तो पहले चाहिए, योग लगाने के तुरंत हमारा योग होगी, हमारा हो गया नहीं होगा बाबा से, सगाई हुई नहीं हुई, अभी सगाई हो गई नहीं हुई, सगाई तो हो गई, तो सगाई होने के बाद हमारा किसका, हमारे ख्याल में कौन रहना चाहिए, अंतर्मुखता माना सोचने की शक्ति, मस्तक माना सोचने की शक्ति, तो अंदर सोचो ना मैं कैसे, मैं कौन हूं, मेरा कौन है, मेरा उससे सर्व संबंध क्या है, मैं कैसी हूं, अंदर से महसूस कर लो उसको, अंदर से आंखों से क्या दे, आंख कहां जाए, अंदर आत्मा को देखे, अंदर से परमात्मा को देखे, आत्मा परमात्मा के संबंध को देखे, अपने कर्मों को देखे, कर्मों के हिसाब किताब को देखे, नहीं फिर नाक से क्या सूंघना है, आत्मा के गुणों को सूंघो, 36 में से कितने गुण मेरे अंदर आ गए, कितनी परसेंटेज में आ गए, कोई बदबू तो नहीं है अंदर, नाक किस लिए होती, सूंघने के लिए होती ना, कोई अवगुण है तो माना क्या है, बदबू है कि नहीं, नहीं? और मुख से क्या करना है, आत्मा के गुणों का स्वाद लो, एक एक गुण का स्वाद लो, एक एक संबंध का स्वाद लो बाप से, और बोलो फिर कैसे, कानों से क्या सुनो, आत्मा की सुनो, आत्मा क्या कह रही है, बाबा क्या कह रहा है, आज के लिए क्या होमवर्क दे रहा है, बाबा का आज फरमान क्या है, बाबा की शिक्षा क्या है, सावधानी क्या है, आज के बाबा की आज्ञा क्या है, मुरली में क्या बातें, 4 बातें होती ना, कौन कौन सी, पहली शिक्षा, फिर दूसरी, सॉरी पहले पहले होता है आज्ञा, फिर शिक्षा, फिर सावधानी और फिर फरमान, चार चीजें मुरली में होती है ना, रोज की मुरली में होती है। तो देखो आज की ऐसे अंदर से कानों के द्वारा वो सुनो, है ना, और फिर मुख के द्वारा सारी चीज कंबाइंड होकर फिर बोलो। तो ये अंतर्मुखता की परिभाषा है। नहीं भेद की वैराग्य वृत्ति, इस देह और देखी दुनिया से छोड़ के मुझे वापस घर जाना है, ऐसी लगन लगे। और तब हमें तन मन धन और संबंध का क्या करना है, यह तन मेरा नहीं किसका है, बाबा की अमानत समझ के हम यूज करें। मन भी पुराना तन है ना, ये तन की मुझे मेंटेनेंस, अब बे बाबा का तन है, उसकी उसका तन समझ करके, अमानत समझ के उसकी देखभाल करनी, संभाल करनी। मेरा मन, मेरा तन नहीं, बाबा का दिया हुआ तन है। और मन भी क्या है, ये पुराना मन नहीं, काला मन नहीं, बाबा का दिया हुआ मन है। बाबा से हर संकल्प मैं पूछ के करूं, शक्तिशाली योग लग में आया तो, हर संकल्प मेरा बाबा से पूछ के वेरीफाई हो, जैसे ब्रह्मा बाबा से कंपेयर करो, टैली करके करें हर संकल्प भी। और फिर क्या, तन मन धन, धन माना सबसे पहले समय हमारा धन है, समय है, मान लीजिए मेरा खाली समय है, श्वास है, और धन स्थूल धन भी बाबा से बिना पूछे हम खर्च ना करें, बाबा की राय लें। बाबा की राय नहीं तो निमित्त आत्मा, जो सेंटर पे हमारी निमित्त आत्मा, उस पर राय लें। हाँ एक बात मैं कहना भूल गया, 9 लाख में फोन आएगा, 16,000 में तो मैंने कहा था, 9 लाख की बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत फर्स्ट क्वालिटी, फर्स्ट क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्लास प्रजा चाहिए, उसमें भी कौन आएगा बताओ, कोई बता सकता है, बोलिए कौन आएगा, आपने हाथ उठाया ना, 9 लाख में वो आएगा जो सबसे पहले खाने से पहले, कुछ भी अंदर डालने से पहले, शरीर को भोजन देने से पहले, आत्मा का भोजन स्वीकार करता है टाइम पर। 7 बजे का टाइम मुरली पर, तो 7 बजे मुरली में आके पहले बाबा की मुरली सुनता है, क्लास में आके, कहां पर, घर में मोबाइल पे नहीं, टीवी पे नहीं, है व्हाट्सएप पे नहीं, कहां पर, क्लास में आके, क्योंकि हम ईश्वरीय दरबार है ना, वो क्लास नहीं है, क्या है वो, ईश्वर की दरबार है, उसमें आके अपनी जगह पे बैठता है। ये दादी ने, बड़ी दादी ने मुझे बात सिखाई, क्योंकि कभी कभी पेशेंट रहते ना, उसमें जैसे हम निकलते थे मुरली के लिए, उसमें अचानक कोई सीरियस पेशेंट आ गया, हम उसमें लग गए, और फिर टाइम लगा कि अब 7:20 हो गए, अभी तो क्या मुरली में जाएंगे, फिर जाते नहीं थे। तो दादी शाम को जब जाते ना वापस पांडव भवन, तो दादी पूछती, गुप्ता जी शाम सुबह मुरली में नहीं दिखाई दिए, मैंने दादी ऐसे ऐसे हो गया, कितने बजे पेशेंट ठीक हो गया था, दादी 7:15 ठीक हो गया था, तो भी टाइम तो था ना, 10 मिनट तो थे ना आपके पास, तो उसमें 7:30 मुरली पूरी होती थी, 7:30-8 तक पूरी हो जाती थी, तो आपके पास 10 मिनट तो थे ना, क्यों 10 मिनट में क्यों नहीं आए, दादी कितनी देर क्लास में, इतनी देर से आते हैं क्या, लोग क्या कहेंगे, उसने कहा कोई आप सब जानते हैं डॉक्टर लेट हो सकता है, तो आपकी सीट में फिक्स कर देते हैं पहले, तो आप आके बैठ जाओ, धारणा के लिए मुख्य सारी सुना, पर आपकी सीट फिक्स है, ईश्वरीय दरबार है, रोज हाजिरी लगनी चाहिए। तो क्लास में आके मुरली अगर 7 से 8 सुनी तो पहले जन्म में आओगे, अगर 8 बजे आए, बच्चों को स्कूल भेज के आए, तो क्या होगा, एक जन्म मिस। 2 घंटे लेट हुए तो जितने यहां के घंटे लेट, वहां उतने वहां के जन्म लेट, ये मुरली में लिखा हुआ है। 9 बजे आए, नाश्ता करके आए तो 2 जन्म लेट, 10 बजे आए तो 3 घंटे, कपड़े धो के आए तो 3 जन्म लेट, 11 बजे आए तो 4 जन्म लेट, आधा सत्युग गया, और 12 बजे आए तो 5 जन्म लेट, और शाम को आए तो पूरा सत्युग निकल गया, सीधा त्रेता में उतरेंगे। नहीं, क्योंकि बाबा की प्रायोरिटी नहीं है, मैंने जब से समझा, होश संभाली, जब से मैंने समझा, तब से मैंने समझा बाबा को, तब से मुझे याद है ना, वैसे 68 से हमारे घर में गीता पाठशाला थी, हर प्रोग्राम में दादियों से मिलते थे, टोलियां खाते थे गुरुवार को, संडे को भोग खाते थे, पर रेगुलर, क्योंकि पढ़ाई का ऐसा था ना, फिर हॉस्टल में कितने साल रहे हम, रेगुलर चले ही नहीं 68 से, फिर 86 से रेगुलर हुए, जब समझ आ गई, बाबा के समझ आ गई, तो तब से तो बाबा बस, फिर तो मैंने कभी मुरली सुनने से पहले कभी ना मुंह में कुछ डाला नहीं, पानी के अलावा, मुरली सुनने के बाद ही फिर शरीर को भोजन दिया। तो आप ऐसा नियम बना सकते हैं, नहीं बना सकते, इसमें ऐसा कैसा, कितने भाई बहन करते हैं, हाथ उठाओ, बाकी अभी नियम बनाना पक्का, क्योंकि 9 लाख में आना भी बड़ी बात है, सत्युग में श्री कृष्ण के साथ आना भी बड़ी बात है, नहीं तो पक्का करना, नहीं करना पड़ेगा। तो ये जो मैं बात कर रहा था ना अभी आपसे, किस क्या बात कर रहा था, तन मन धन और संबंध, संबंध सारे दुनिया के संबंध बुद्धि से त्याग दो, संपर्क भी त्याग दो, सिर्फ बाबा से, बाबा के द्वारा मां का संबंध, शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा मां की पालना और प्यार दे रहे हैं, और दिव्य ब्राह्मण जन्म देते ही क्या करता है मुझे, शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा मां का पालना और प्यार देता है और दिव्य रूहानी दृष्टि दे देता है, पहली बर्थडे गिफ्ट क्या है, रूहानी दृष्टि, सबके प्रति रूहानी दृष्टि, हम सब आत्मा एक पिता के बच्चे आपस में भाई भाई, ये वाली दृष्टि दे देता है, राइट। तो हम सबको ये देखते हैं और फिर दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट गिफ्ट में दे देता है, जो एक सेकंड में मुझे आत्मा को सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म शरीर के साथ, सूक्ष्म शरीर माना सूक्ष्म, ये हमारा मन, जिस मन में मुरली भरी हुई है, जिस मन में क्या भरा हुआ है, मुरली के संकल्प, मुरली ही संकल्प है, मुरली का ही चिंतन है, मुरली का ही मंथन है, उसी हिसाब से मेरी भावना बनी है, मुरली उसी के हिसाब से मेरी रूहानी वृत्ति बनी है, रूहानी दृष्टि बनी है, रूहानी वायुमंडल बना है, वही मेरे अंदर रिकॉर्ड हो गई, भगवान मेरा साथी है, ये फीलिंग अंदर गीत अंदर से बजता है, प्रीत रीत प्रीत मीत और गीत और रीत है ना, प्रीत शिव बाबा से वो प्रीत और वो मेरा मीत बन गया, दोस्त बन गया, और गीत गीत गाते रहते, कौन सा पानाथा सोपाले काम क्या बाकी रहा, और रीत, ये चार मर्यादाएं निभाते रहते हैं, कौन सी, पवित्रता, शुद्ध सात्विक भोजन, सत्संग और दैवी गुणों की धारणा, और चार नियम कौन से हमारे, पावरफुल अमृत वेला, बीज रूप स्थिति में बन के बीज रूप स्थिति बाप से कंबाइंड होके कलव की जड़ में सारे विश्व को सकाश देना, अमृत वेला इतना पावरफुल अनुभव, वरदान दाता विधाता वरदाता के साथ कंबाइंड रहना, अपने को भी वरदान देना, दूसरों को भी वरदान देना, और फिर पावरफुल मुरली है ना, बाबा के समय पर बाबा की मुरली सुनना, और फिर तीसरा सारा दिन अटेंशन बाबा की मुरली का मनन चिंतन मंथन सिमरण करना, उसमें मगन रहना, और सोने के पहले वेंटिलेशन, सारा सच सच सचा पोता मेल, बाबा आपने ये कहा था मैं इतना किया, इतना नहीं कर पाया, ये गलती हो गई, उसको मैंने आंख दिखाई, मैंने थोड़ा सा ज्यादा खा लिया स्वाद में, आज आधी सब्जी बहुत अच्छी लगी, मैंने आधी रोटी ज्यादा खाई, ये मर्यादित है मर्यादित है, बताओ आधी रोटी ज्यादा खाना मर्यादित है मर्यादित है, स्वाद में खाई तो किसमें आसक्ति हुई नहीं हुई, एक एक बात सूक्ष्मता से बाबा को लिखो, इसको बोलते वेंटिलेशन, गलत देखा बाबा उसको देख के मैं थोड़ा थोड़ी देर के लिए मैंने इधर बुद्धि आ चली गई है ना, गलत बोल दिया बाबा थोड़ा मर्यादित बोला, थोड़ा बाबा मैंने गलत सुना, मैंने सोच में कहा था नहीं सुनूंगा फिर भी सुना, बुद्धि चली गई उधर, ये बाबा को छोटी छोटी बातें देखो, इसे बोलते हैं ईमानदारी, क्या कहते हैं इसको ईमानदारी, तो ऐसे बाबा को लेटा, तो चार नियम पके हुए, फिर जो है एक एक माँ का संबंध मैंने बताया क्या क्या किया, एक तो दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट गिफ्ट में मिली, एक सेकंड में मुझे आत्मा को सूक्ष्म शरीर के साथ सात चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं से भरपूर पवित्र बुद्धि पवित्र मन सूक्ष्म शरीर है, पवित्र बुद्धि दिव्य बुद्धि उसका इंजन है, और संस्कार जो मेरी आदत बन गई, चार नियम और चार धारणाएं, ये मेरे संस्कार, ये वो ड्रेस है ब्राह्मण की, तो सूक्ष्म शरीर तैयार हो गया, इस सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में पहुंचा देती है, ये दिव्य बुद्धि रूप लिफ्ट कहां पहुंचाती है, सूक्ष्म वतन में नहीं, कहां पहुंचाती है, सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में पहुंचा देती है, और वहां एक एक संबंध को गहराई से महसूस करो, मां का संबंध, बाबा की गोद में बैठ के, अब मां बन गई ना शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा मां की, अब मां इंट्रोड्यूस करा रही बाप से, पिता के रूप में शिव बाबा तुम्हारा पिता है, बाप क्या करता है ज्ञान का तीसरा नेत्र दे देता है, देखो अपने आप को देखो, बाबा को देखो, शिव बाबा कैसे बैठा है, ब्रह्मा बाबा को देखो, ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर को देखो, अपने आप को देखो, अपने सूक्ष्म शरीर को तीसरी आंख से देख रहे हैं ना, सत्य की, इसको बोलते हैं प्रज्ञा की शक्ति, इससे देखो, ठीक है, फिर बाप के रूप टीचर के रूप में क्या करता है बाबा, हम स्टूडेंट बन जाते हैं और बाबा हमको पढ़ा रहा है, मुरली पढ़ा रहा है, त्रिकालदर्शी बना देता है, तो बाबा बाप के रूप में क्या बनाता है, त्रिनेत्री, टीचर के रूप में क्या बना देता है, त्रिकालदर्शी अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बना देता है, तो बाबा की गोद में बैठकर सुदर्शन चक्र घुमाओ, अपने अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप को देखो, अपने अंदर महसूस करो अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप कैसा है, ज्ञान स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, सर्वशक्ति स्वरूप, वो स्थिति को देखो बाबा के साथ, बाबा सागर और मैं उसके सामने, अपने को महसूस करो परमधाम में, फिर देवी देवता स्वरूप को देखो, सर्वगुण संपन्न, देखो 36 के 36 गुण मेरे अंदर है, चेक करो गुणों की लिस्ट है आपके पास, 36 गुणों की लिस्ट देखो, चेक करो, मेरे पास 36 गुण है, कितने कितने परसेंट में, फिर 16 कला संपूर्ण, माना हर गुण में 100% हुआ हूं कि नहीं हुआ हूं, कितनी कमी बाकी है, संपूर्ण निर्विकारी, देवान का अंश तो नहीं है, चिंता भय तो नहीं होती कभी कभी, आलस तो नहीं आता कभी, अलबेलापन तो नहीं आता, मतलब देवान का अंश भी ना रहे, फिर मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, हर मर्यादा में पुरुषोत्तम हूं, फिर अहिंसा परमो धर्मो, कहीं थोड़ा अंश तो नहीं है किसी हिंसा का, किसी को संकल्प से तो हट नहीं करता, दादा विश्वतन कहा करते थे किसी को संकल्प से भी दुख ना पहुंचाओ, अगर माला का दाना बनना है, माला का दाना बनने वाली आत्मा किसी को संकल्प से भी हर्ट नहीं करती है, कोई चीज आपने ऐसे रखी थी इसको यहां रख दिया, किसका संकल्प चला तो भी 108 की माला में नहीं आ सकते हो, बेड पे सोते हो बेड पे भी सलवट नहीं पड़नी चाहिए, अगर पड़ गए तो सीधा उसको सीधा करके उठो, है ना, ठीक करके उठो, कोई गंदगी इस कमरे में ना पड़ी हो, काम वाली को भी बर्तन आपका गंदा ना दिखाई दे उसको भी धो करके रख दो ताकि उसको सिर्फ साबुन लगाना पड़े, ये नहीं खाना उसमें लगा हुआ है, सिंक में रखते हो ना, उसको भी ऐसा किसी को ऐसा फील ना हो कि मैं ऐसा झूठा बर्तन साफ कर रहे हैं, किसी का भी संकल्प नहीं चलना चाहिए 108 की माला का दाना बनने के लिए, यस, ऐसे अपने आप से, तो बाबा की गोद, तो ये हो गया ऐसे सरगुण 16 अहिंसा परम धर्म, फिर मध्य पूज्य स्वरूप, मध्य पूज्य स्वरूप क्या हुआ, अखंड दानी, अखंड दानी माना मेरी मूर्ति के सामने रात को आधी रात भी कोई आए तो उसका ज्ञान माना सत्य की समझ आ जाए, उसको देवान भूल जाए, देवभिमान भूल जाए, देह के संबंध संपर्क का भान भूल जाए, देवान के स्वभाव संस्कार का भान भूल जाए, नहीं देवान के स्वभाव संस्कार भूल जाए, ज्ञान स्वरूप मतलब ज्ञान माना सत्य की समझ, ये है ज्ञान अखंड दानी, 24 घंटा मेरी स्थिति ऐसी रहती है, कोई मेरे सामने कभी भी आए, सो रहा हूं तो भी आए तो उसको क्या होना चाहिए, देवान भूल जाए, अखंड महादानी माना गुणों का दान, तो मेरे चेहरे से मेरे कर्मों से चलन से चेहरे चलन से गुण दिखाई देते हैं, सत्यता दिखाई देती है, पवित्रता दिखाई देती है, निर्भयता दिखाई देती है, सभ्यता दिखाई देती है, अंतर्मुखता बहर की वैराग्यवती दिखाई देती है, 36 गुण दिखाई देते हैं, देखो ना? फिर अखंड महादानी मूर्ति बोलती नहीं है कि तू वैसे शक्तियां सत्य को प्रकटने शक्ति विस्तार को निर्णय करने की शक्ति विस्तार को सार में लाने की शक्ति समेटने की शक्ति सहन करने की शक्ति समाने की शक्ति सामना करने की शक्ति सहयोग करने की शक्ति दिखाई देती है अपने अंदर देखो शक्तियों का दान वरदान होता है गुणों का दान महादान होता है और ज्ञान का दान दान होता है ना तो ऐसी स्थिति मेरी है बिना बोले ये मध्य पूज्य स्वरूप संगम की ब्राह्मण स्वरूप बाप दादा की गोद में बैठा हूं सूक्ष्म वतन में बाबा मुझे अपनी गोद में बैठा के लोरी सुनाते ना बाबा समझा रहा है मुरली पढ़ा रहा है मीठे बच्चे ऐसे ऐसे मीठे बच्चे ये मीठे बच्चे वरदान दे रहा है स्लोगन दे रहा है बच्चे ऐसा दिन ऐसे करना नहीं तो ऐसे और फिर फरिश्ता स्वरूप बाबा के साथ में सारे विश्व की सेवा कर रहा हूं तो ऐसे 5 स्वरूप की बाबा की गोद में बैठ के दिल करो टाइम तो पूरा हो गया मैं 2 मिनट 5 मिनट और ले लूं तो अखंड महादानी है ना तो ये हो गया ये वाला हो गया फिर ब्राह्मण स्वरूप फिर फरिश्ता स्वरूप और उसके बाद पिता उस सतगुरु के रूप में बाबा क्या करता है मुक्ति जीवन मुक्ति का वरदान देता है मुक्ति जीवन मुक्ति या कहो बाबा हमको त्रिलोकीनाथ बना देता है हम सूक्ष्म वतन में कब जा सकते हैं परम धाम में कब जा सकते हैं क्या बिना पाप कर्म का विनाश किए किंतु बाबा हमको मल्टीपल एंट्री वीजा दे देता है मल्टीपल एंट्री वीजा किसका जब चाहो सूक्ष्म वतन में आओ जब चाहो परमधाम जाओ और कभी कभी स्पेशल वीजा मिल जाता है कहां जाने का सुखधाम में जाने का नहीं तो ऐसे डील करने का हमको वीजा मल्टीपल एंट्री फ्री वीजा जब चाहो जब जितनी चाहो जितनी बार चाहो उतनी बार जाओ बाबा की गोद में पहुंच गए परमधाम में बिंदी बन के परमधाम बाबा के पास पहुंच गए कभी कभी अपने अपने महल में पहुंच गए कभी कभी फिर वापस आ गए परमधाम में आ गए क्योंकि परमधाम से वहां जा सकते हैं सूक्ष्म वतन से जा सकते हैं वहां पे परम धाम से वहां जा सकते हैं ठीक है तो हमें वहां कुआं से जा सकते हैं कभी कभी जैसे जितनी तपस्या जितने दैवी गुण धारण होते जाएंगे ना 36 दैवी गुण 16 कला संपूर्ण बनते जाएंगे जितना संपूर्ण निर्विकारी बनते मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परम बनते जाएंगे उतना हम परम धाम से लास्ट में जब विनाश का समय आएगा उस समय हम बार बार अपने सुखधाम में अपने महल में जाते रहेंगे अपने स्वरूप में को महसूस करते रहेंगे नगाड़े बजते रहेंगे अंदर तक खुशी के नगाड़े बजते रहेंगे हमारे राइट तो इस तरह से अपने आप को महसूस करो तो यही योग है यह योग नहीं है क्या फिर बंधु के रूप में सारा बोझ उसको दे दो, लौकिक अलौकिक बोझ सब उसको दो। सखा के रूप में अपने मन की सारी टेंशन, सारी बातें, जो बात किसको बता नहीं सकते हो, दोस्त को बता दो, बाबा मुझसे गलती हो गई, बाबा ये बात मुझे बार बार खाती है, मेरे दिल खाती है, बाबा मुझसे गलती हुई थी ना पहले, आज भी याद आई, सपने में आई, बाबा से शेयर करो। साजन के रूप में 36 गुणों को बाबा हमसे सजाता है, 36 गुणों से हमको सजा रहा है। देखो एक गुण का श्रृंगार कैसा है, समय नहीं है तो मैं आपको एक एक बात बताता कैसे इससे योग होता है, बहुत सुंदर है ना, 36 गुणों का कैसे योग होता है ना, बहुत सुंदर योग होता है, सीक्वेंस वाइज होता है। तो 16 कला इसमें, फिर इसके बाद सर्जन के रूप में, फिर बाबा क्या करता है, सर्जन, बाद में बाबा देखता है, बाबा कहता है पॉलिश कर रहा हूं मैं तुम्हारी ना, क्या करता है, फिर बाबा देखता है कोई कमी तो नहीं है, 16 कला एक एक गुण सज गया नहीं सज गया, फिर बाबा नहीं होते ना कहां जाते, ब्यूटी पार्लर में जाते हैं ना, सारा देखने के बाद क्या करते हैं, सजाने के बाद कुछ कमी होती है ना, कहीं बाल आगे पीछे हो रहा होता कुछ, वहां से कटिंग करके फिर ठीक करते हैं ना, तो सर्जन क्या करता है उस रूप में हमका एकदम फाइनल पॉलिश करता है ना। और फिर बाबा जब हम पूरे सज जाते हैं ना, तो तब बाबा हमारा बच्चा बनता है, तब बाबा हमारा बच्चा बनता है। रवि बच्चा बनता है क्या, जहां जीत वहां जन्म, जिसने आठों गुणों आठों संबंधों के अनुभव की अथॉरिटी बने होंगे ना, बाबा से हर जैसा समय जैसा स्थान जैसा कार्य बाबा को वैसे संबंध से हमने यूज किया हुआ, और तब बाबा हमारा वारिस बनता है, और तब बाबा इतना सुखदायी बच्चा बनता है, हमें हर समय हमें क्या हमेशा महसूस होता है, बाबा के साथ खेलते हैं, बाबा मालिश कर देता है, बाबा प्यार करता है, बाबा गाड़ी चला देता है, बाबा कुछ भी कर देता है ना, बाबा से कुछ काम करा लो कर देता है, ऐसी हमें फीलिंग होती है, राइट। ऐसे बाबा से सर्व संबंधों की अनुभूति करो, इससे हम बन जाते निरंतर योगी, ठीक है ना। फिर बाबा से हम और बात, बाबा के सूक्ष्म वतन बैठे बैठे बाबा से बातें करते रहते हैं, बाबा से ज्ञान के पॉइंट पूछते हैं, बाबा से बातचीत करते हैं, जब सारा बात पूरी होती है तो क्या होता है, वहां से अश्रीरी बन के परमधाम घर में अश्री बाप से कंबाइंड हो जाते हैं, करंट आने लगती है, बैटरी चार्ज होने लगती है, तो बैटरी चार्ज ऐसे एंडोर्फिन निकलने लगते हैं, एक्चुअली नेचुरल मॉर्फिन निकलने लगती है, एनकेफेलिंस, अंदर से जीन्स शांत, बीमारी के जीन्स शांत हो जाते हैं, कर्म भोग कर्म योग में परिवर्तन हो जाता है। हमारा कर्म मतलब कर्म भोग हमें महसूस ही नहीं होता, दर्द ही महसूस नहीं होता, जैसे बड़ी दादी को मैं देखता था, तकलीफ हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, दादी सहन करके समा रही है ना, वो डॉक्टर आया इंजेक्शन लगा रहा है, यहाँ पे यहाँ नस नहीं मिली, नस सूज गई थी ना, यहाँ लगाया नहीं लगा, यहाँ लगाया नहीं लगा, यहाँ लगाया नहीं लगा, दूसरा हाथ दे दिया लो लगा लो, है ना, ये देखे नहीं अभी मैंने लगवाती, सहन करके समाना और सामना करना और फिर सहयोग करना उसको ही, इसको बोलते सहनशीलता, है ना, इसको बोलते सहनशीलता। इससे विक्रम विनाश अंदर अंदर विक्रम विनाश हो रहे हैं, इस जन्म के पिछले जन्म के, और जब इससे फिर मैंपन और मेरेपन का त्याग, इससे आदमी बेफिक्र बादशाह, दादी को देखता था गले में ट्यूब पड़ी हुई है और दादी मुस्कुरा रही है, मैं दादी के पास ही बैठा होता था, दादी को मैं हाथ हिलाकर बोलता, दादी दादी बोल तो नहीं सकती थी, दादी कहाँ हो दादी, मैं से दादी को दादी कहाँ हो ऐसे इशारा करके, दादी कहती बाबा के पास, इशारे से बोलती थी मैं बाबा की गोद में हूँ। अतिंद्र सुख आनंद में ऐसे होती थी, दादी का चेहरे पर इतनी मुस्कुराहट होती थी, इतनी जैसे दादी रोमांचित होती थी बहुत, कहाँ बॉडी सूजी हुई, कहाँ गले में ट्यूब पड़ी, यहाँ ट्यूब पड़ी हुई, यहाँ से खून की नाली पड़ी हुई, यहाँ पर सब हाथ पर हिला नहीं सकती है, तो भी शरीर में इतना ही तकलीफ, किंतु शरीर से न्यारी विदेही है ना, बाबा की गोद में स्वीट साइलेंस का अनुभव कर रही है। तो ये है पावरफुल योग है ना, कर्म भोग को कर्मयोग से चुकतु कर रही है, और फिर ऐसे बेफिक्र बादशाह बनने से मैंपन और मेरापन त्याग हो जाता है। मैं अपने मेरे प्रण का त्याग सबसे लास्ट में होता है, मैं अपने मेरे प्रण का त्याग हुआ तो क्या हुआ, निराकारी अवस्था बन जाती है। अशरीर और निराकारी में फर्क है, अशरीर में देह अभिमान का त्याग होता है, निराकारी में देह भान का त्याग होता है। फिर जब निराकारी अवस्था में निराकारी बाप से कंबाइंड होते हैं परम धाम में, तो क्या होता है, तपस्या, ज्वालामुखी तपस्या होने लगती है, तब निर्विकारी अवस्था आती है, देह भान खत्म होता है, और तब हमारे अंदर बेहद की निस्वार्थ भाव की सेवा आती है, तब जाकर के हमारे अंदर क्या होता है, तब हम निरहंकारी बनते हैं, अर्थात निरंतर स्मृति स्वरूप हमारी स्थिति बनने लगती है, चलते फिरते नष्टो मोह स्मृति लब्धा। तो ये तपस्या है, शक्तिशाली तपस्या, राइट, शक्तिशाली योग तपस्या, योग याद और तपस्या, तीनों का बहुत प्रैक्टिकल अनुभव करने की आवश्यकता है। तो बाबा से चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते क्या करना है, सरल संबंधों की अनुभूति करना ही शक्तिशाली योग तपस्या। बाबा ईश्वर अपने साथ है, खाली गीत नहीं गाना है, क्या करना है, प्रैक्टिकल में अनुभव होता रहे, ऐसी स्थिति बन जाए, राइट। ओम